नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृति भाव संवेदनाओं की गंगोत्री।
जी,
ये पुस्तक 1988 से 1990 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, उनका कहना था कि ये ज्ञान शरीर हमेशा जीवित रहेगा और इसे मतलब जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
जी हाँ, और आज के समय में देखें तो पूज्य गुरुदेव की ये बात कितनी सच लगती है। इस पुस्तक का जो मूल विचार है कि भाई, समाज में जो मुश्किलें हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं भाव संवेदनाओं के सूख जाने में है।
सही कहा। जब दिल वो महसूस करना कम कर देता है तो इंसान जैसे निष्ठुर सा हो जाता है ना, और समाज भी फिर नीचे की ओर जाने लगता है।
बिल्कुल, पतन की ओर।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञान शरीर से समझें कि ये भाव संवेदनाएं असल में हैं क्या, इनके कम होने से या सूख जाने से क्या फर्क पड़ता है, और सबसे जरूरी, इन्हें वापस कैसे जगाया जाए।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए बहुत अच्छे मतलब दृष्टांत दिए हैं, जैसे वो वेद व्यास और नारद जी का संवाद है।
हाँ, वो तो बड़ा गहरा प्रसंग है।
जी, सोचिए, वेद व्यास जैसा महान विद्वान, वेदों का वर्गीकरण किया, पुराण रचे, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, पर वो भी दुखी थे।
किस बात से दुखी थे?
समाज की दशा देखकर लोग मोह में, अहंकार में बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सारा ज्ञान, सारी मेहनत वो लोगों के दिलों तक, उनके भावों तक नहीं पहुंच पा रही, कहीं कुछ कमी रह गई थी।
और यहीं पे देवर्षि नारद आते हैं, वो समाधान बताते हैं।
जी, नारद जी कहते हैं कि समस्या बुद्धि की कमी की नहीं है, समस्या है भावों के सो जाने की, दिल के महसूस ना करने की।
तो उपाय क्या है?
उपाय है भाव संवेदनाओं का जागरण, मतलब इंसान के अंदर जो वो महसूस करने की शक्ति है, जो आत्मा सोई हुई सी है, उसे जगाना।
अच्छा,
और यही वो ताकत है जो अहंकार को गला सकती है, मन और बुद्धि को सही दिशा दे सकती है। और ये संवेदना, देखिए, दोधारी तलवार जैसी है। अच्छी चीजों के लिए फूल सी कोमल और बुरी प्रवृत्तियों के लिए वज्र जैसी कठोर।
मतलब विवेक के साथ इस्तेमाल करना होगा।
बिल्कुल, लोकहित में विवेक के साथ।
पूज्य गुरुदेव ने इसे और साफ करने के लिए कई जीवन उदाहरण भी दिए, जैसे वो विश्वंभर मिश्रा चैतन्य महाप्रभु बनना।
हाँ, कमाल का उदाहरण है। वो कितने बड़े पंडित थे, शास्त्रार्थ में कोई मुकाबला नहीं, पर उनके गुरु संत ईश्वरपुरी, उन्होंने समझाया
क्या समझाया?
यही कि बेटा, ये केवल दिमागी कसरत है, अगर इसमें अनुभूति नहीं, करुणा नहीं, तो ये ज्ञान सूखा है, बेकार है।
अच्छा,
और जैसे ही विश्वंभर जी के अंदर वो भाव जगा, वो श्रद्धा जागी, बस फिर वो कोरे निमाई पंडित नहीं रहे।
वो चैतन्य महाप्रभु बन गए।
हाँ, और फिर देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी सारी विद्वत्ता, सारी ऊर्जा लोगों के दिलों में प्रेम जगाने में, भक्ति जगाने में लगा दी, मुर्दा मनों में जैसे जान फूंक दी।
ये दिखाता है कि संवेदना जागते ही ज्ञान का उद्देश्य बदल जाता है।
बिल्कुल सही। और इसी तरह नारी चेतना का उदाहरण मीराबाई।
हाँ, मीराबाई,
हाँ।
राजपाट सब छोड़कर।
जी, सारे बंधन तोड़कर वो गलियों में निकल पड़ी प्रेम और करुणा बांटने। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाव श्रद्धा नारी की एक विशेष शक्ति है,
हाँ,
और मीरा ने उसे व्यापक बनाया समाज के लिए।
और फिर वो सम्राट अशोक वाला उदाहरण, वो तो एकदम अलग है।
हाँ, कलिंग युद्ध, उसके बाद का अशोक।
कहते हैं उस युद्ध की विभीषिका, वो मार काट, और फिर एक बूढ़े बंदी के कुछ शब्दों ने,
हाँ, उसने चंड अशोक मतलब क्रूर अशोक को झकझोर दिया।
उसे समझ आया कि जीतने में और बेरहम होने में क्या अंतर है।
बिल्कुल। और फिर आचार्य उपगुप्त का मार्गदर्शन मिला, उन्होंने अपने अंदर की वो दबी हुई करुणा जगाई, खुद तो बदले ही का संदेश लेकर। तो देखिए, कितना बड़ा झटका भी संवेदना जगा सकता है अगर सही दिशा मिले।
पूज्य गुरुदेव जी जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र करते हैं।
हाँ, उनकी करुणा, कैसे उन्होंने मछुआरों को सिखाया कि मिल बांट कर खाओ, धन का मोह छोड़ो, और जैकिस जैसा कठोर व्यक्ति भी।
हाँ, उसके दिल में भी संवेदना जगा दी। पूज्य गुरुदेव इसी जागृत भाव संवेदना को होली घोस्ट कहते हैं, है ना?
जी, पवित्र आत्मा। और अपने देश में देखें तो महात्मा गांधी।
बापू का उदाहरण तो बहुत मार्मिक है, वो गरीब स्त्री और उसकी फटी धोती।
हाँ, दक्षिण भारत की घटना, उसे देखकर उनके अंदर ऐसी करुणा जागी कि उन्होंने फैसला कर लिया जीवन भर आधी धोती ही पहनेंगे।
ये बाहरी बदलाव उनके अंदर के गहरे जुगाव का प्रतीक था, सच्ची महानता।
जी, और एक और नाम, ठक्कर बापा, अमृतलाल ठक्कर, इंजीनियर थे।
अच्छा।
हाँ जी, पर जब एक हरिजन की दीन दशा देखी तो सब छोड़ दिया, नौकरी आराम सब, और उन्हीं के बीच जाकर रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, हरिजनों के हरिजन बन गए वो।
वाह।
पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि, वो नजर जो दूसरे का दुख देख सके, महसूस कर सके, वरना आंखें होकर भी क्या फायदा।
सही बात है। तो ये सारे उदाहरण, चाहे संत हों, सम्राट हों या समाज सेवक,
जी,
ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं।
बिल्कुल, एक ही सत्य की ओर,
कि ये जो भाव संवेदना है,
जी,
यही असल में मनुष्यता की गंगोत्री है, यहीं से इंसानियत का झरना बहता है।
जी, इसके बिना जीवन रेगिस्तान है, निष्ठुर, पतित।
और जब ये जाग जाती है, बहने लगती है, तो जीवन में क्रांति आ जाती है, व्यक्ति सही मायनों में वो जो कहते हैं ईश्वर पुत्र की गरिमा पाता है।
और पूज्य गुरुदेव का ये संदेश आज भी, शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। उनका तो दृढ़ विश्वास था कि धरती पर स्वर्ग जरूर उतरेगा।
हाँ, स्वर्गीकरण निश्चित है, वो कहते थे।
जी, पर उसके लिए हमें, मतलब अपने अंदर की इन सोई हुई संवेदनाओं को जगाना होगा। यही आत्मचेतना का जागरण हमें आने वाले समय के योग्य बनाएगा।
और सबसे बड़ी बात जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो ये कि दिव्य संवेदना, ये महसूस करने की ताकत, ये सरसता, ये हम सब के अंदर है, कहीं बाहर से नहीं लानी।
जी हाँ, मौजूद है, बस सुप्त है।
तो अब विचार करने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हम अपने अंदर की इस कोमलता को, इस सरसता को कैसे जगाएं, और सिर्फ जगाएं नहीं, अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने व्यवहार में कैसे लाएं।
यही यही सबसे बड़ा सवाल है, और शायद पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञान शरीर को, इस पुस्तक के संदेश को समझना और इसे और लोगों तक पहुंचाना ही आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
जी।